Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 3, Text Number 11. Kripaya, in atyant hi pavitra shakto ko, mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagwan kehte hain,
Divan bhavayatanina, te diva bhavayantu vaha. Parasparam bhavayantaha shreyah paramavapsyatha devan bhavayatanena te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayantaha श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयत भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ
शब्द का अर्थ देखिए देवान् अर्थात देवताओं को भावयत यानी प्रसन्न करके अनेन इस अनेन का मतलब होता है इस यज्ञ से यानी जब हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और आगे कहते हैं ते देवा भावयन्तु यह वह ते देवा मतलब वे देवा मतलब देवतागण जिनका यज्ञ किया जाता है जब वो प्रसन्न हो जाते तो भावयन्तु प्रसन्न करेंगे वह तुमको यानी हम देवताओं के लिए यज्ञ करके उनको प्रसन्न करेंगे और देवता यज्ञ से प्रसन्न होने के बाद हमें वांछित वस्तु प्रदान करके हमें प्रसन्न करेंगे और इससे क्या होगा परस्परम भावयन्तः परस्परम मतलब आपस में देवताओं का और मनुष्यों का जब आपस में भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करेंगे तो श्रेयः श्रेय का मतलब होता है वास्तव में मंगल मतलब यज्ञ करने से ही मनुष्य का मंगल होता है और परम का मतलब होता है सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट टाइप का और अवाप्स्यता यानी तुम प्राप्त होगे। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखो देवताओं के लिए यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे और देवता प्रसन्न होंगे तो आपको श्रेय प्रदान करेंगे और इससे आप परम अवाप्स्यते ऐसे करते करते आपको परम सिद्धि परम लक्ष्य श्रेय प्राप्त होगा जो परम होगा यानी कि अब शुरू शुरू में तो आप डायरेक्ट से सुप्रीम पर्सनैलिटी के साथ है ना अपना कनेक्शन नहीं जोड़ सकते जो मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जिस स्टेज पर हो वहीं से आपको उठाया गया। अगर आप कर्म कांड के स्टेज पर हो तो वहीं से आपको स्टार्ट करना, यदि आप कर्म योग के स्टेज पर हो तो आपको वहां से उठाना, और यदि आप भक्ति योग के स्टेज पर हो तो आपको डायरेक्ट बुद्धि योग या भक्ति योग को करना। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अभी बुद्धि योग को, भले बुद्धि योग बहुत ही अच्छा है, मैंने उसको श्रेष्ठ कहा है भक्ति योग को, लेकिन आप अभी कर्म योग के स्टेज पर हो तो आप कर्म योग करो, यानी आप कर्म करो और अपना कनेक्शन जो है वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम ट्रुथ के साथ जोड़ो। लेकिन अगर आप कर्म योग भी नहीं कर सकते तो कर्म कांड करो ना, ये कर्म कांड की विधि बता रहे हैं। वास्तव में पंच यज्ञ शास्त्रों में बताए गए हैं, पांच महायज्ञ होते हैं। एक होता है पितरों के लिए या पूर्वज जो होते हैं ना उनके लिए, और दूसरा है देवताओं के लिए, तीसरा है ऋषियों के लिए, और चौथा है मनुष्य जीव है ना, दूसरे मनुष्य उनके लिए, और जो पांचवा है जो जीव है ना, जिनसे हम जैसे अलग अलग पशु हैं जैसे। अब इनका यज्ञ क्यों किया जाता है, पितरों के लिए यज्ञ क्यों किया जाता है, क्योंकि पितरों ने हमें कुल दिया, यहाँ उनकी कृतज्ञता प्रदक्षिण करने के लिए कि उन्होंने हमें कुल दिया है, उन्होंने हमें शरीर दिया है, उन्होंने हमें यह संसार में समाज में रहने के लिए एक व्यवस्था बनाई ना हमारे लिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ऋण को चुकाने के लिए उनके लिए पितृ यज्ञ किया जाता है। अब देवताओं के लिए यज्ञ क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें, देवता जो है, भगवान ने अलग अलग ड्यूटीज देवताओं को दी है, वो हमें अन्न प्रोवाइड करते हैं, जल प्रोवाइड करते हैं, अग्नि प्रोवाइड करते हैं, वायु प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे भौतिक जीवन के लिए आवश्यकता। अब ये भौतिक जीवन को हमें संतुलित रखना है ना, ताकि हम इसी के जरिए, तो ये सु अवसर है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इसी के जरिए से हम उस अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब इस शरीर को ही पालन करने के लिए यदि हमें सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, ये जल अग्नि और अनाज इत्यादि ये प्राप्त नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो देवताओं के लिए यज्ञ कहा गया, और उसके बाद ऋषियों के लिए यज्ञ। अब ऋषियों ने हमें क्या दिया है, वेद है ना, ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, वेद दिए हैं, वेदों का अध्ययन हम करते हैं तभी तो हम भगवान को समझ सकेंगे, तो ऋषि यज्ञ। और उसके अतिरिक्त मनुष्यों को यज्ञ, मनुष्यों को दान देना होता है, जैसे दूसरे मनुष्य हैं, जैसे कोई गरीब है उनको अन्न दान करते हैं, या फिर कोई इस तरह से जिनको आवश्यकता है, जो अब जो समृद्ध है उनका ये कर्तव्य है कि दूसरे जो असमृद्ध हैं, जो नहीं अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो उनके लिए हमें परोपकार करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो दूसरे जीव हैं, पशु हैं, जैसे उनके जरिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, उनके जरिए हमें, जैसे गाय दूध देती है, और है ना इस तरह दूसरे भी पशु हमें दूध भी देते हैं, और बैल हल चलाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, इन सबको हमें, इन सब की ऋण है हमारे ऊपर, तो इन सबको के ऋण को चुकाने के लिए ये सब यज्ञ किए जाते हैं। और ये सब ऋण है, जैसे हमारे पास पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, और अन्य जीवों का ऋण है, और मनुष्यों का, तो फिर इनको ऋण को चुकाने के लिए वास्तव में जो हमारी वैदिक संस्कृति है ना, वैदिक संस्कृति बहुत ही कृतज्ञ संस्कृति है। कृतज्ञ का अर्थ है कि अगर आप कोई थोड़ा सा भी आपकी सहायता करता है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हम उनका कृतज्ञ मतलब बखान करते हैं, उनको थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि ये पांचों हमें कुछ दे रहे हैं ना। अब जिनकी वजह से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो कितना बड़ा उपकार है उनका, तो इनका उपकार अपने अंदर फील करके कि इतना हमें, हम पे उपकार कर रहे हैं, उसकी वजह से हम उनके लिए यज्ञ करते हैं। हम समाज से बहुत कुछ ले रहे हैं, है ना, समाज नहीं होता तो हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। तो क्योंकि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन सब का सहारा ले रहे हैं, तो इन सबको भी हमें कुछ देना चाहिए। और जब ऐसे करते करते हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, क्योंकि पवित्रता आती है ना यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, कृतज्ञता को ना प्रदर्शित करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो क्या बुद्धि विकसित हो जाती है। फिर बुद्धि में ये बात आती है कि वास्तव में ये व्यक्तियों से, मतलब अलग अलग व्यक्ति जैसे देवताओं या फिर पितरों या फिर इनसे जो जो हमें मिल रहा है वो वास्तव में वो व्यक्ति नहीं दे रहे हैं, वास्तव में ये सब कुछ हमें भगवान के माध्यम से दे तो भगवान रहे हैं, लेकिन इन व्यक्तियों के माध्यम से। जैसे पितृण में क्या, मतलब पेरेंट्स हमें क्या देते हैं, माता पैदा होते ही हमें दूध पिलाती है ना, और माता के बहुत बहुत ऋण होते हैं। अगर भगवान के बाद किसी को ये ना हमारे पूजा के योग्य है तो वो माता है, क्योंकि उसी के कारण हमने ये शरीर मिला है, उसी के कारण हम इस योग्य हुए हैं कि हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, उसी के कारण, क्योंकि माता ने हमें ऐसी हमारी परवरिश की है, तो उस हिसाब से। लेकिन माता ने हमें दूध पिलाया शुरू में, अगर माता दूध नहीं पिलाती छोड़ देती, रो रहा है गंदा है छोड़ रहे, तो फिर हम आगे प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन माता को वो दूध पिलाने का की शक्ति या माता के स्तन में दूध किसने दिया, वो भगवान ने दिया। तो भगवान की वजह से यानी कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है, अब देवताओं से अनाज यानी कि अनाज मिल रहा है या वर्षा हो रही है तो वो देवताओं से हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली देव भगवान जो है वो देवताओं को दे रहा है, और भगवान की वजह से, मतलब देवताओं की वजह से हम तक पहुंच रहा है। इसका सरल अर्थ ये है कि जब तक जीव को यह ज्ञान नहीं हो जाता है कि हम पर हमारे जीवन पर जितने भी उपकार हैं वो वास्तव में भगवान के उपकार हैं, तो हम अगर यदि कोई भगवान की भक्ति करता है और दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, तो फिर अगर भगवान की सेवा करते हैं तो सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य कर्म कांड के स्तर से ऊपर नहीं उठेगा ना, तो यहाँ पर जो भक्त होते हैं, यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो भगवान की भक्ति तक पहुंचे वो डायरेक्ट से नहीं पहुंचे कि इसी जन्म में हम भगवान को समझ गए और भगवान की भक्ति करना शुरू हो गए और महामंत्र में हमारी रुचि हो गई भगवान की कथा में, ये स्टेप बाय स्टेप ना जाने कितने जन्मों तक हम ये सब करते आए होंगे। और आप कहीं जाकर हमें ये पता चला है कि इन सब का स्रोत क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। तो लेकिन जिसको अभी खबर नहीं है और उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है और अभी जो जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो डायरेक्ट से भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। फिर वो देवताओं से स्टार्ट करेगा ऐसे करते करते करते, फिर जब उसकी बुद्धि में पवित्रता आएगी। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7:28 में, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते हि सुदृढ़, इस तरह है श्रमा, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए, ये यज्ञ इत्यादि जो पुण्य कर्म है ना, उनके विषय में भगवान बता रहे हैं कि जिन्होंने बहुत जन्मों में ये कर लिए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया विच्छेदन हो गया है, यानी कि जिनके समस्त ऋण से वो मुक्त हो गया, पाप कर्मों से मुक्त हो गया है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, तभी उनके अंदर ऐसा साहस होता है कि वो भगवान की भक्ति में निरंतर लग सके। वास्तव में भगवान की भक्ति करना कोई साधारण जीवों के लिए संभव भी नहीं है, इसलिए जिन्होंने बहुत बहुत जन्मों तक ये शुभ कर्म किए होते हैं उसी को ये अवसर प्राप्त होता है कि वो भगवान की भक्ति करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ अनुवाद देखिए, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वकदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहकरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहकललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी का कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुति देवी प्रणमामि हरि भी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि कौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता माते की जय हो। हम श्रीमद्भगवद्गीता का तीसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। तो भगवान श्री कृष्ण हमें कर्मों के और कर्म योग के विषय में बता रहे हैं, जिसमें कर्म कांड की विधि भी है। और भगवान अभी हम क्योंकि दसवां श्लोक हमने कल पढ़ा, जिसमें भगवान ने बताया सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा उरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वत्वम् एषवो सृष्ट कामधुक्। के सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी हो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। कि इस संसार में सुखी रहने के लिए भी आपको यज्ञ करना है, और यदि आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यज्ञ करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे हम इस यज्ञ के अनुष्ठानों से करते 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 जब हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी तो हमें क्या पता चलेगा। उसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने अंतिम इन शब्दों में बताया कि इस कलयुग में जो वाक्य में पर्याप्त बुद्धि वाले हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का यज्ञ ही एकमात्र करना है, और संकीर्तन यज्ञ से ही उन्हें परम लाभ प्राप्त होगा। और वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से लौकिक है। यानी कि प्रैक्टिकल है ना, दूसरे यज्ञ तो अब उनके लिए सामग्री जुटाना ही मुश्किल हो जाएगा, और सामग्री जुटाने के बाद भी शुद्ध ब्राह्मण का मिलना और समय का बहुत अभाव है इस कलयुग में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता में भी 9.14 में इसी यज्ञ की संस्तुति की गई है। तो 9.14 में श्रील भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, सततम कीर्तयन्तु मा यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा जन मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान बताते हैं कि वास्तव में जो महात्मा है, जो वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को समझ गए हैं, तो वो एक ही यज्ञ करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, यानी कि भगवान की कथाओं का बखान करते हैं, श्रवण करते हैं और मुख से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। यतन्तश्च दृढवता, बहुत ही दृढ़ संकल्प से, उनको ये पता होता है, उनकी ये पूरी श्रद्धा होती है कि इसी से हमारा कल्याण होगा। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं और नित्य युक्त सत्य निरंतर इसी तरह से भगवान की पूजा करते हैं और इसी से जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, इनको पूरी श्रद्धा होती है। जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, वास्तव में केवल बुद्धिमान, यहाँ पर साफ साफ देखा हमें बताया गया कि सुमेधसः यजन्ति ही सुमेधसः, जिनकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है वो तो ये कर सकते हैं, लेकिन जब तक अभी हम इस स्टेज पर नहीं आए हैं तब तो हमें कर्मकांड के ही चक्कर करते हुए आगे बढ़ना होगा। और भगवान अभी आज के श्लोक में बता रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सतः। अर्थात यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद दर्शनवाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त शासक है, यानी कि भगवान ने यह संसार के व्यवस्था को सही रखने के लिए देवताओं को अधिकार प्रदान किया है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल और अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। अब अलग अलग जो भी हमारे शरीर को चलाने के लिए चीजें की आवश्यकता होती है, जैसे वायु यानी हवा, प्रकाश यानी रोशनी, जल यानी पानी और दूसरे भी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, ये सब हमें देवताओं के कारण प्राप्त होते हैं। और देवता जो है वो भगवान की, यहाँ बशास्ता देखा, भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्य सहायक, भगवान के शरीरों के सहायक। वास्तव में ये देवता जो है ना भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त होने के बाद अब भक्त जो है ना वो अपनी भक्ति कैसे प्रदर्शित करेगा, जब भगवान उसे सेवा का अवसर प्रदान करेगा तो बहुत दिल करता है, मतलब जो भक्ति करते 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 देवता बनते ना, तो देवता जो है ना वो भगवान के सर्वेंट है, विलिंगली दास है। वो क्या चाहते हैं, भगवान उनको कोई सेवा प्रदान करे, तो भगवान ये सारा सिस्टम खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को उनकी आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, जन्मादस्यतोन वयादितरतस चार्थेश्व भेग्यः स्वराट, वो स्वराट है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, उनको किसी देवता की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्योंकि देवता भगवान के सेवक है, अब सेवक को यदि सेवा नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए क्योंकि दुख होता है ना, सेवक तभी प्रसन्न होता है जब उसका मालिक, उसका जो भगवान या उसका स्वामी जो है वो उसको सेवा प्रदान करता है। तो देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब भगवान उनको ये सारे ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फिर है ना देवता ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देवता जो है भगवान के अंश ही है और सहायक है भगवान की कार्यकलापों के लिए। तो उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ पर संपन्न यज्ञ संपन्नता पर निर्भर है। यानी कि जीव यदि यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु जो भी तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को ही प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। अब कुछ यज्ञ जो होते हैं वो खास तौर पर देवताओं के लिए ही होते हैं, लेकिन वास्तव में यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही। भगवान श्री कृष्ण बताएंगे अभी 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। आप जितने भी यज्ञ कर रहे हो, चाहे वो स्पेशल देवता के लिए भी हो, लेकिन उनका वास्तव में भोक्ता केवल मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप जो भी यज्ञ कर रहे हो तो आपके ये बात आपको खबर होनी चाहिए कि समस्त यज्ञों के भोक्ता एकमात्र कृष्ण है, और आप जो भी यज्ञ कर रहे हो तो वो केवल और केवल यज्ञपति यानी कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न भागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं होता। यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थ जो है, जैसे जीवन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब देवताओं के जरिए प्राप्त होती हैं। तो यदि यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तो फिर इन चीजों का अभाव नहीं होता। हमारे यहाँ पर देखते हैं, हम बहुत सारा सूखा पड़ता है, हर चीज का अभाव हो जाता है, खाने की चीजें और अनाज और बहुत अभाव है। उसका कारण यही है कि अभी जीव मनुष्य जो है वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो यज्ञ नहीं कर रहे इस तरह से देवता प्रसन्न नहीं होते हैं और हर चीज प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। आगे कहते हैं कि यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। दूसरे लाभ कौन से होते हैं? जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यज्ञ करने से हृदय शुद्ध होता है और हृदय शुद्ध होने से हमारी बुद्धि विकसित होती है कि हम किसको, हम क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है इस जीवन में सुखी रहना नहीं। वास्तव में देवता हमें भौतिक पदार्थ ही प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फिर जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि ये भौतिक पदार्थ प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन का लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करना। तो ऐसे यानी जिनसे अंततः और अंत में आगे चलकर हमें ये पता चल जाता है कि भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही यज्ञ किया जाता है, और इस यज्ञ का वास्तविक जो भोक्ता है वो भगवान है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे जैसा कि वेद वचन है। अब यज्ञ से कैसे पवित्र होते हैं? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यानी यज्ञ से मनुष्य का खाद्य पदार्थ शुद्ध होता है। यज्ञ जब हम करते हैं तो जो अनाज यज्ञ में आहुति दी जाती है तो क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है, और उससे क्या होता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति यानी जीवन के शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं। वास्तव में हमारी स्मृति में सूक्ष्म तंतु होते हैं जो अशुद्ध हो जाते हैं जब हम यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ में अर्पित नहीं करते हैं और अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खाते हैं तो। लेकिन जब हो जाता है तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, भोजन भी शुद्ध हो जाता है और हमारा जीवन भी शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध हो जाता है तो स्मृति के क्या बताया कि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति जो है वो हमारी सूक्ष्म तंतु है वो भी शुद्ध हो जाते हैं। स्मृति लंबे सर्व ग्रांति नाम विप्रमोक्ष। जब स्मृति हमारी यानी कि वास्तव में हम कोई भी गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विस्मृति हो गई है कि हम वास्तव में कौन है। लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं, सूक्ष्म तंत्र शुद्ध हो जाते हैं और हमारी स्मृति शुद्ध हो जाती है और हमें अपनी रियलिटी कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो जब स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, सारे जो ग्रंथियां हैं, सारे अपराध हैं, सारे मन में जितने द्वंद्व हैं, सब पवित्र हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि वास्तव में ये सारे कार्य हमें क्यों करने हैं, ताकि हम इस स्टेज तक पहुंच सके कि हम भगवान कृष्ण भावनामृत तक पहुंचने हैं। और कृष्ण भावनामृत तक पहुंचना जो है वो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि जीव के इतने सारे अपराध जमा हो गए हैं और इतना मतलब बुद्धि अब आहार शुद्ध नहीं है, तो फिर जब आहार ही शुद्ध नहीं है तो इस श्लोक को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आहार अशुद्धो सत्व अशुद्धो, यानी आहार शुद्ध नहीं है तो जीवन अशुद्ध है ना, आहार भी शुद्ध नहीं है तो जीवन भी शुद्ध नहीं होगा ना, क्योंकि जैसा आहार वैसे विचार, और अगर सत्व अशुद्धो दुर्वा स्मृति, अगर हमारा जीवन शुद्ध नहीं है तो फिर हमारी बुद्धि हमेशा अपवित्र रहती है, और जब बुद्धि अपवित्र रहती है तो क्या हुआ, तो आगे हमारी कभी भी हम मोक्ष के लिए, क्योंकि बुद्धि अपवित्र है और सूक्ष्म तंतु जो है वो शुद्ध नहीं है, तो सदैव क्या होगा, अपवित्र भावनाएं होंगी और कभी भी मोक्ष के लिए हम आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। तो इस समाज का सबसे सर्वाधिक आवश्यकता क्या है, कृष्ण भावना में। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम जीवों को, जितने भी जीव है, उनको यह कृष्ण भावनामृत प्रोवाइड करें, यही हमारे चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और श्री प्रभुपाद जी ने इसी मिशन को आगे बढ़ाया। तो हम सबका ये कर्तव्य है, हम अकेले नहीं हैं, पूरी परंपरा हमारे साथ है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब हमारे साथ है। हमें अपने एकदम ऑनेस्टली, एकदम सिंसियरिटी के साथ ये कार्य करना है, जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां तक मानव कल्याण के लिए कृष्ण भावनामृत को पहुंचाना है। तो इस तरह से मनुष्य जब संकीर्तन यज्ञ करेगा तो इससे क्या होगा, यज्ञ करेंगे, भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे, आहार शुद्ध होगा तो उससे जीवन शुद्ध हो जाएगा और जीव इस जन्म मरण के भाव बंधन से छूटकर भगवान को प्राप्त करेगा। यही समस्त शास्त्रों का अध्ययन है कि समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने का लक्ष्य यही है कि हम उस स्टेज तक पहुंचे। फिर हम कहाँ पर हैं, वहीं से हमको उठाया जाता है कि हम कर्म कांड की विधि के हैं, कर्म योग के हैं, या फिर कर्म या फिर भक्ति योग। लेकिन वास्तव में यदि इस कलयुग में हम भगवान के पवित्र नाम का यज्ञ करते हैं, यज्ञो संकीर्तन प्राहि, केवल इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यदि ये सरल विधि हम सबको सिखाते हैं तो संपूर्ण यज्ञ उससे संपूर्ण हो जाते हैं और हम जीवन के वास्तविक लाभ यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।